अगला बाब देखते हैं, अस्सियामल ममनू ओवल मकरूह, ममनू और मकरूह रोजे। ईद उल फितर और ईद उल अदहा के रोजे रखना मना है। दलील, अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, मैंने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो के साथ नमाज ईद अदा की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, इन दो दिनों के रोजे रखने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। पहला दिन जब तुम अपने रोजे खत्म करो, दूसरा दिन जब तुम कुर्बानी का गोश्त खाते हो। रोजे खत्म करो से क्या मुराद है? चांदगी और ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अदहा। सिर्फ जुमे के रोज दिन का रोजा रखना मकरूह है। बाद लोग इबादत समझते हुए सिर्फ जुमे को अगर खाली रोजा एक रखें और इसको ये सोचें कि ये बहुत नेकी है कि जुमे का दिन है, तो ये चीज जो है मकरूह होगी। अगर कोई शख्स अपने मामूल के मुताबिक जुमे का रोज़ा रखे तो जायज़ है, मगर अगर कोई शख्स हर दूसरे या तीसरे दिन रोज़े रखने का आदी है तो किसी दिन जुमे का रोज़ा आ जाए तो जायज़ है। दलील, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की रात यानी जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात को क़ियामुल लैल के लिए मुकर्रर ना करो और न जुमे का दिन रोज़े के लिए मखसूस करो। हाँ, अगर कोई शख्स रोज़े रखने का आदि हो और इसमें जुमा आ जाए तो फिर जायज़ है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। दूसरी दलील, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, कोई आदमी सिर्फ जुमे का रोज़ा ना रखे, अगर रखना चाहे तो एक दिन पहला या पिछला मिलाकर रखे, यानी जुमेरात और जुम्मा या जुम्मा और हफ्ता। इसे बुखारी ने रिवायत किया। अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूँगी के पास लोग जुमे के दिन को ख़ास तौर पे इबादत समझ के ऐसे काम करते हैं कि आज जुमे की रात है हम कुछ पढ़ लें या जुमा है सुबह में कुछ कर लें। बाज़ लोग तस्बीह नमाज को करते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है? तो पहली बात देखिए कि जुमा अफजल है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के नबी ने बाज़ जगह आता है कि जुमा ईद की तरह, यानी एक मुसलमान को जुमे का अहतमाम करना चाहिए। लेकिन आपने सिर्फ इतनी ही बात कह के नहीं छोड़ दिया, हमें जुमे के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी बताई हैं। इंशाल्लाह नमाज नबी बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक पूरा टॉपिक है नमाज जुमा के मौजू पे। तो जो काम आपने बता दिए वो तो आप करें, इसके अलावा आप कुछ करते हैं आपका अपना अमल है, ठीक है, लेकिन ना किसी को पाबंद करें और ना खुद किसी चीज़ पर अपने आप को पाबंद करें। और ये ना सोचें कि आज पढ़ना मेरे लिए ज़्यादा अजर है। बस यही बात जो तस्बीह नमाज की है, जिस दिन कभी भी पढ़ेंगे या जुमे को पढ़ेंगे ये सेम है, ठीक है। हाँ, जुमे के दिन दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना या सूरह कहफ़ का पढ़ना, नमाज जुमा का पढ़ना, गुसल करना और कुछ इस तरह अपने खुशबू का एहतमाम करना, नाखूनों का काटना, ये मसनून है। तो जो भी नेकी हम करें उसको फिर वो सुन्नत के दायरे के अंदर रह के करें। अल्लाह ताला कैसे इस्लाम में हमारा फोकस क्या रखता है कि अपनी मर्ज़ी से किसी ख़ास दिन को ख़ास कर लेना ये पसंदीदा अमल नहीं है। सौमे विसाल यानी शाम के वक्त रोज़ा इफ्तार ना करना और कुछ खाए पिए बगैर अगला रोज़ा शुरू कर देना मकरूह है। दलील, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौमे विसाल से मना फरमाया तो एक आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप तो सौमे विसाल रखते हैं। आपने फरमाया, तुम में कौन मुझ जैसा है, मैं तो रात को सोता भी हूँ, तो मुझे मेरा रब खिलाता भी है और पिलाता भी है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। यानी आपका अमल ऐसा था, कभी घर में खाने को कुछ ना होता तो कहते नहीं मेरा रोज़ा है। तो अगर आप इस तरह कर सकते थे तो हम क्यों ना करें? तो आपने कहा कि मुझे अल्लाह ताला खिलाता है। अब ये कौन से खिलाने थे? अल्लाह ताला स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे जब बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है और प्लस अल्लाह ताला के रास्ते में लग जाता है तो उसकी भूख प्यास वैसे ही कम हो जाती है। इससे ये भी मतलब है कि जब ज़िंदगी में एक मकसद आ जाता है तो जितना मकसद बड़ा होता जाता है उतना आपकी अपनी ज़ात पर लगने वाला वक्त जो है वो मुख्तसर होता जाता है। खाना पीना फिर इंजॉयमेंट के लिए नहीं रहता बल्कि वो सिर्फ एक ज़रूरत के तहत हो जाता है कि जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान खाता है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लम का ये कहना कि अल्लाह ताला मुझे खिलाता था, इससे मुराद कोई गलत ना समझे, क्योंकि बाज़ लोगों ने फिर इससे भी तसव्वुफ की तरफ गए और इंसानों ने में भी कुछ लोगों ने इस चीज़ के दावे किए कि अब फलां को तो खाने की ज़रूरत ही नहीं और उसको इस तरह की बातें। ठीक है, इंसान है, भूख तो लगती है, लेकिन जब आप मसरूफ़ होते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक मकसद होता है तो फिर वो भूख इतनी अहम नहीं होती। और आप आजमा के देखें, जब आप ज़हनी तौर पर खाली होते हैं ना, सारा दिन खाने का ख्याल आएगा, ये खा लूँ, अब वो खा लिया तो मिर्चा लगी, अब मीठा खा लूँ, मीठा खा लिया तो मुंह मीठा हो गया, अब चाय पी लो। चाय पी तो और पता चला कि ये पानी बहुत पी लिया, और एक खेल चलता ही रहता है। फारिक लोग ज्यादा खाते हैं, जंक खाते रहते हैं। बामकसद इंसान एक मौके पे खाएगा और दैट्स इट, फिर उसको कई घंटे तक किसी चीज के खाने की जरूरत नहीं रहती। अगली बात, रमजान शुरू होने से पहले इस्तकबाल के तौर पर रोजे रखना मना है। अगर कोई शख्स अपने गुज़श्ता मामूल के मुताबिक रोजे रखता चला आ रहा है और वो दिन इत्तफाकन रमजान से 1 या 2 रोज पहले आ गया तो कोई हर्ज नहीं। दलील, अबू हुरैरा कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, रमजान से 1 या 2 रोज पहले कोई आदमी रोजा न रखे, अलबत्ता वो जो शख्स अपने मामूल के मुताबिक रोजे रखता चला आ रहा है वो रख सकता है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। तो खास तौर पे नहीं रखना, इसको बाज लोग सलामी रोजा कहते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मुसलसल रोजे रखना मना है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मुझे खबर मिली कि तुम हमेशा दिन को रोजा रखते हो और रात को क्याम करते हो। मैंने अर्ज किया, हाँ ए अल्लाह के रसूल, मैं ऐसा ही करता हूँ। आपने फरमाया, ऐसा मत करो, रोजा रखो भी तर्क भी करो, रात को क्याम भी करो और आराम भी करो। तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमान का तुम पर हक है। जिसने मुसलसल रोजे रखे इसका कोई रोजा नहीं। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। कितना प्यारा है हमारा दीन, सोने को भी इबादत कहता है, बीवी के साथ सोने को भी इबादत कहता है, खाना खाने को भी इबादत कहता है। इसलिए हमारे दीन में रहबानियत नहीं है ये सोच के कि शादी ना करना नेकी है, नहीं। और आज मैं देखती हूँ कि ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, पता नहीं दुनिया के रंग में बढ़ता जा रहा है या दीन समझ के नहीं रख लोग शादी करना पसंद करते, हालांकि ये फितरत के खिलाफ है। तो इंसान हर काम में एक तनासुब रखे और ना एक हद पे जाए ना दूसरी पे जाए। अय्याम तशरीक यानी 11, 12, 13 जुलहज के रोजे रखना मना है। अलबत्ता जो हाजी कुर्बानी ना दे सके वो मीना में अय्याम तशरीक के रोजे रख सकता है। दलील, हजरत आयशा और इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुम से रिवायत है कि अय्याम तशरीक में किसी आदमी को रोजा रखने की इजाजत नहीं दी गई सिवाय उस हाजी के जो कुर्बानी देने की ताकत ना रखता हो। बुखारी ने रिवायत किया। और वो कुर्बानी ना देने वाली बात कुरान पाक की एक आयत में आती है, लेकिन इन दिनों में रोजे नहीं रखने चाहिए। अब आप देखिए, ये ईद के दिन कहलाते हैं ना हमारे यहाँ, 11 ईद का दूसरा दिन होता है, 12 तीसरा, और ईद चौथा जो होता है दिन वो 13 जिलहज का, और यही वो दिन है जिसमें कुर्बानी भी की जा सकती है। अमूमन हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर है ना कि ईद के तीसरे दिन तक कुर्बानी होती है, हालांकि चौथे दिन को सुबह के वक्त में भी कुर्बानी की जा सकती है। हाजी को अरफात में 9 जिलहज यानी योम अरफा का रोज़ा रखना मना है। हालांकि आम लोग उस दिन रोज़ा रख रहे हैं और क्या अजर पा रहे हैं, एक दिन में 2 साल के गुनाहों की माफ़ी, लेकिन जो हाजी है वो नहीं रखेगा, क्योंकि 9 जिलहज का दिन सबसे भारी दिन होता है हज वालों पे। उसी दिन लोग अरफात में जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक इज्तिहाम और गर्मी की कैफियत होती है। इसकी दलील क्या है, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, लोगों ने अरफा के दिन नबी अकरम के रोज़े में शक किया, यानी उनको लगा कि आप रोज़े से हैं, तो उन्होंने यानी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपके पास दूध भेजा, आपने इस प्याले से दूध पिया। इस वक्त आप मैदान अरफात के मौक़िफ़ में खड़े थे, यानी खड़े होने की जगह, और लोग आपको देख रहे थे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। कितना प्यारा अंदाज़ है, ये नहीं पूछा आप रोज़े से हैं, आपका रोज़ा, सच्ची बताएं, कसम से बताएं, झूठ ना बोलें, सच नहीं करें। किसी का भी रोज़ा आसमान है ना, तो उसके लिए आप ये तरीका इख्तियार करें, कोई ऐसा अमल पेश कर दें कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि रोज़ा होगा तो वो खुद ही नहीं करेंगे या उस खाम को नहीं खाना चाहेंगे, पीना नहीं चाहेंगे, तो लिहाजा पता चलेगा। दूध भेजा, नहीं पिया तो समझ गए रोज़ा है, आप पी लिया तो समझ गए कि रोज़ा खुल गया। तो ये हिकमत इंसान को अपनी अमली ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह फ़ायदा देती है। निस शाबान के बाद रोज़े नहीं रखने चाहिए। दलील, अबू हुरैरा कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब निस शाबान बाकी रह जाए यानी रमज़ान से पहले 15 दिन तक, तो नफली रोज़ा ना रखो। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया। और इस पे हम बात कर चुके कि इसकी हिकमत क्या है, कि इसके बाद फिर इंसान इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में रोज़े रखने के लिए तैयार होगा। अगला मसला है, औरत का अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़ा रखना मना है। दलील, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में इसकी इजाज़त के बग़ैर سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزہ نہ رکھے، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ نفلی روزہ عورت شوہر کی موجودگی میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ یہاں لفظ غور کیجئے گا، شوہر کی موجودگی میں، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس میں ایک حکمت ہے۔ اب ایک مرد رہتا ہی باہر ہے، جاب کے سلسلے میں کہیں ہیں، کاروبار کے سلسلے میں، کسی کو ملنے گیا، اب بیگم پیچھے اکیلی ہیں، اب روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو کہ میاں کو فون کریں گی، ای میل کریں گی، اجازت نامہ لیں گی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق احکامات دیے ہیں۔ ایک عورت نفلی روزے سے ہے، شوہر کا روزہ نہیں ہے اور رمضان کے دن بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ شوہر کے دل میں کسی وقت عورت کے لیے خواہش پیدا ہو۔ اب بیوی کا اگر روزہ ہے اور مرد اس کو اس روزے کو توڑنے پہ مجبور کرتا ہے، تو اگر اس میں باہمی افہام و تفہیم یعنی میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تحت اگر عورت روزے کے بارے میں پہلے پوچھ لیتی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شوہر کہہ دے کہ تم نہیں رکھو یا آج خاص طور پہ نہ رکھو، تو پھر عورت نہیں رکھے گی۔ رہ گئی بات مرد دور ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اگلا مسئلہ ہے کہ ہر روزے کے لیے پوچھیں، ہر دن پوچھیں؟ مثلا کوئی عورتیں ہیں، ان کی عادت ہے پیر جمعرات کا رکھنے کی، یا کوئی اور اپنے پچھلے چھٹے ہوئے یا وٹ ایور، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ جیسے گھروں میں انتظامات چلتے ہیں نا، شوہر مرد بیویوں کو کچھ رقم دے دیتے ہیں خرچ کی، اب بیوی ہر ڈالر یا ہر کرون خرچ کرنے سے پہلے پوچھتی تو نہیں ہے نا، کر لیتے ہیں خرچ، اوور آل پتہ ہوتا ہے کہ بھی آپ نے اس مہینے میں اتنا خرچ کیا، یہ ضرورت ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو جہاں شوہر اور بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، تو وہاں پھر انسان اس طرح کی باتیں بڑے آرام سے منواتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کرنا وہ شوہر کے ذمے لگا دیں، ایسے ہی ہے نا، کہ وہ رکھنا تو بہت چاہتے ہیں، میاں نہیں کہتے، تو میاں بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے، مطلب ہنسی مجھے اس لیے آئی کہ دو باتیں یاد آ گئیں۔ ایک موقع پہ اس طرح کی کوئی بات ہو رہی تھی خواتین میں، قرآن کی کلاس ہی کی بات تھی، تو مرد بھی سائڈ پہ ہوں گے یا عورتیں بھی ہوں گی، کچھ اس طرح کی کہانی تھی۔ تو بیویوں میں سے کسی نے کہا کہ بڑا دل چاہتا ہے قرآن کی کلاس لینے کا، بس میاں نہیں اجازت دیتے نا۔ تو وہ بات ادھر سے میاں کے کان میں پڑ گئی، تو وہاں وہ زور سے بولے، کہیں گے جھوٹ نہ بولو، ہے تم نے جانا تم نے خود نہیں ہوتا اور میرے نام پہ ڈالتے ہو۔ تو میں تو اکثر یہ سوچتی ہوں کہ بہت ساری بیویاں مردوں کو ہی آگے کر کے جنت میں جانا چاہتی ہیں کہ ان کے نام پہ لگا دیں۔ اچھا یہاں یہ بات آ گئی۔ اب دوسری چیز یہ جو ہے کہ بیوی کو حکم ہے کہ شوہر کی مرضی سے نہ رکھے، لیکن اس کا اپوزٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا شوہر بھی بیوی سے پوچھ کے رکھے؟ تو یعنی میرے ہسبینڈ جو ہے نا، الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے، لیکن وہ نفل روزوں ہے، ان کا جیسے ایک محبت ہے، وہ مجھے کہتے ہیں تمہیں پڑھانے کا شوق ہے تو مجھے روزوں کا، اور ہماری ڈیلز اسی طرح ہوتی ہیں کہ آپ مجھے پڑھانے سے نہ روکیں تو میں آپ کو روزے سے نہیں روکوں۔ تو اب میں نے کبھی نہ رکھنا ہو نا، تو میں کبھی ایسے سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں سچی آپ مجھے ایک دفعہ بھی کہیں نا کہ تم نہ رکھو تو میں نہ رکھوں گی، یا کبھی میرا دل ہو کہ یہ نہ رکھیں، کوئی ایسا وقت ہے، موقع ہے، کام ہے، یا تو یہ رکھیں، تو میں ان کو کھلوانے کی کوشش کروں، تو اس وقت میں یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ کھول لیں، آپ نہیں کھول رہے، تو اگر آپ مجھے تو ایک دفعہ کہیں گے تو میں فوراً کھول لوں گی، تو کہتے ہیں کہ میں کیوں کہوں گا، میں تو تمہیں کبھی نہیں کہوں گا نا۔ تو آپ دیکھیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ، محبت سے یہ زندگی کے معاملات جو ہوتے ہیں بڑے پیارے ہونے چاہیے، خاص طور پہ شوہر بیوی کا تعلق جو وہ دوستوں کی طرح ہو، جولی ہوں، ہنس ہنسی مذاق والے ہوں۔ یہ نہیں کہ اب آپ دین پہ آ گئے اور آپ کے ماتھے سے تیوریاں ہی نہ جاری ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں، لیکن عموماً جب عورتیں قرآن کی طرف آتی ہیں نا، تو بس وہ اللہ والیاں بن جاتی ہیں، تو وہ پھر شوہر والیاں کم ہی بنتی ہیں۔ تو ہنسے مزہ خوشی ہنسی سے، جہاں ان کو غصہ آئے آپ کے کسی کام پہ تو ہنس دیجیے، اسمائل دے دیں، پھر کیا۔ ان کا سوال ہے کہ فرض روزے جو شوہر سے پوچھنا چاہیے، تو پھر وہی بات کہوں گی کہ عورت کے اندر اتنی سمجھ ہوتی ہے، فرض روزہ چھوٹا ہوا ہے لیکن ضروری تو نہیں کہ آج ہی رکھا جائے، نفل کسی بھی دن میں رکھ رہے ہیں نا، تو اسی طرح فرض بھی وہ کسی دن میں رکھ رہے ہیں۔ اور میرے لیے بیوی کے اندر اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ کس دن مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے روزہ نہ رکھنے کی اور کس دن نہیں پڑ سکتی۔ تو باہمی افہام و تفہیم ہے، نفل رکھا ہوا کھول سکتے ہیں، ہاں فرض رکھا ہوا تو پوچھ سکتے ہیں احتیاطاً، کوئی ہمارا کہیں جانے کا پلان تو نہیں، کوئی اس طرح تو نہیں، وٹ ایور، یعنی تھوڑی سی میرا خیال ہے۔ اور دیکھیں جب نارمل لائف ہوتی ہے نا، فلموں والی لائف نہیں کہہ رہی، جب نارمل لائف ہوتی ہے نا، تو لوگ ایک دوسرے کے لیے بہت قربانیاں دینے کو تیار ہیں، اور وہ جو اگر موویز میں ہے تو پھر تو وہ ہیرو ہیروئن کے پیچھے بھاگتا ہے، نہ کوئی شوہر سارا دن بیوی کے پیچھے بھاگتا ہے اور نہ کوئی بیوی اتنی پارے گا کہ وہ شوہر کو ہر وقت لفٹ کرائے۔ یہ تو ایک بس باتیں ہیں، لیکن اللہ نے حق دے دیا، اختیار دے دیا، اور شوہروں کے لیے بھی یہ ایک چیز بہت زیادہ میرے لیے تسلی کی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اکثر شوہروں کو ایک یہ حدیث اور ایک اور حدیث ضرور یاد ہوتی ہے، اور کوئی ہو نہ ہو، یعنی اپنے مزاج کی حدیثیں یاد رکھتے ہیں نا۔ تو तो पूरी शरीयत नहीं पढ़ते, तो वो चीदा चीदा एक और मतलब वो सिलेक्टिव कोर्स करते हैं हदीसों का। तो बहरहाल ये है कि आप लोग यानी खुद अपने मामलात को जितना आपका दीन की तरफ आने के बाद अपने घर वालों से अच्छा ताल्लुक होगा ना, उतना इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दीन के लिए काम करने की इजाज़त ज़्यादा मिलेगी। ये हमारे एटीट्यूड, हमारे रवैये होते हैं कि जो मर्दों को दूर कर देते हैं। यकीन करें, हम दीन की तरफ आए ना, हमारा एटीट्यूड, हमारा घर में रवैया दिखे। आप लोग खवातीन हैं, आपका अपने बच्चों के साथ, अपने शोहरों के साथ, घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं उनके साथ, आप तो बच्ची हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, इतनी वाजे तब्दीली उनको दिखे जिसमें आप कुरान से जुड़ी हैं कि वो खुद ही कहें कि आप बताएं कि आप दोबारा कब जा रही हैं। और अगर हमारे रवैये से ऑपोजिट हो जाते हैं तो वो चीज़ जो है वो फिर मुश्किल की सबब होती है। शुरू में मुश्किलें आती हैं, फिर आसान हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना मकरूह है। 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम दो दिन के रोज़े रखने चाहिए। दलील, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, 10 मुहर्रम तो यहूद और नसारा के नज़दीक बड़ी अजमत का दिन है। आपने फरमाया, अच्छा, आइंदा साल हम इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे, लेकिन आइंदा साल आने से पहले ही अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुख्सत हो गए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। 10 को क्यों रखा? क्योंकि जब मुसलमान मदीना में आए तो जो यहूद वहाँ पहले से मौजूद थे वो रोज़ा रखते थे। पूछा क्यों? कहा, आज के दिन फिरौन पर बनी इसराइल को गलबा मिला मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, तो शुक्राने का रोज़ा है। तो आपने कहा, अच्छा, तो फिर तो तुमसे ज़्यादा हम मूसा से मोहब्बत रखते हैं और उनसे नस्बत है, अगले साल हम भी रखेंगे, लेकिन मुवासलत से बचने के लिए 7-10 का मिलाएंगे या 11 का मिलाएंगे। कितनी ही बातें इस एक हदीस में गौर करने की। पहली बात है कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था कि अगले साल आप ज़िंदा होंगे कि नहीं। इस तरह हम में से भी किसी को नहीं पता कि अगले साल हम ज़िंदा होंगे कि नहीं। दूसरी बात इसमें हमें पता चली, और वो क्या, कि अल्लाह के नबी नॉन मुस्लिम्स की मुमासलत पसंद नहीं करते थे, इवन इबादत में। यानी इवन जो नफिल रोज़ा है, कोई बुरी चीज़ तो नहीं थी ना, तो फिर बाकी चीज़ों में मुशाबियत की कहाँ गुंजाइश रह जाती है। सिर्फ हफ्ते के दिन का रोज़ा रखना भी मकरूह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुसर रदियल्लाहु अन्हु अपनी बहन समा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, हफ्ते का रोज़ा सिवाय फ़र्ज़ रोज़े के ना रखो। अगर खाने को और कोई चीज़ ना मिले तो अंगूर की लकड़ी या किसी दरख्त की छाल ही चबा लो। इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया। क्यों? इसलिए कि हफ्ता अहले किताब की ईद है। जैसे हमारे लिए जुमा है, मैं तो इस तरह क्रिश्चियंस के लिए हफ्ता, उन्होंने ज्यूस के लिए हफ्ता था, उन्होंने जो चूज़ किया था तो इसीलिए मना किया। तो अगर आप दोनों को जमा करें तो जुमा और हफ्ता दोनों मिला के हम रख सकते हैं। खाली जुमा ना रखें, खाली हफ्ता ना रखें, या उधर से पीर और जुमा रख सकते हैं। इसी तरह अगर हफ्ते का रख रहे हैं तो उसके साथ कोई और रोज़ा रखें। यानी मुराद है कि इसको एक स्पेशल इबादत का दिन बना के कोई नेकी करना, इसकी इजाज़त नहीं है।